नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। निगरानी ब्यूरो राज्य के 6 अधिकारियों और 2 पूर्व मुखिया की संपत्ति को करेगा जब्त। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत गांव का कोई भी कार्य कराने का निर्णय ग्राम सभा करेगी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आज पटना आ रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश कल पटना उच्च न्यायालय परिसर में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। और मौसम विभाग ने कहा, गोपालगंज, सहरसा और पूर्णिया समेत 7 जिलों में शीत दिवस बने रहने की संभावना। समाचार विस्तार से। निगरानी ब्यूरो राज्य के 6 अधिकारियों और 2 पूर्व मुखिया की संपत्ति को जब्त करेगा। विभाग के अपर महानिदेशक जितेंद्र सिंह अंगवार ने बताया, जिन अधिकारियों की संपत्ति जब्त की जाएगी, इसका प्रस्ताव पिछले वर्ष ही राज्य सरकार को भेजा गया था। श्री गंगवार ने कहा कि सबसे अधिक राशि ग्रामीण कार्य विभाग के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता ओम प्रकाश मांझी का है, जिनकी 90 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की जाएगी। इसके साथ ही लखीसराय के तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी दिलीप कुमार, गोपालगंज जिले के एसडीओ विजय प्रकाश सिंह, मोतिहारी नगर परिषद के टैक्स दारोगा अजय कुमार गुप्ता, पटना ग्रामीण की सीडीपीओ फूल परी कुमार, दरभंगा के न्याय दंडाधिकारी राकेश कुमार राय शामिल हैं। ये सभी पदाधिकारी वर्तमान में अपने पदों से हटाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया पंचायत के मुखिया मैनेजर यादव की 80 लाख रुपए से अधिक और समस्तीपुर जिले के जितवरिया पंचायत के मुखिया प्रमोद कुमार राय की 3 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की जाएगी। इधर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग के तत्कालीन 9 पदाधिकारी और 1 कर्मचारी पर प्राथमिकी दर्ज की है। ब्यूरो के अनुसार विभाग से मिले प्रतिवेदन के आधार पर मुआवजा मामले में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। यह सभी पदाधिकारी और कर्मी पटना जिले के भू अर्जन विभाग के हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत गांव की जरूरत का कोई भी काम कराया जा सकता है, लेकिन यह फैसला ग्राम सभा करेगी। श्री चौहान ने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के लोनी बुद्रुक में आयोजित एक ग्राम सभा में कहा कि अब मजदूरी 1 सप्ताह के भीतर देना अनिवार्य होगा। श्री चौहान ने कहा कि अगर 15 दिन में भुगतान नहीं हुआ तो मजदूर को 0.05% अतिरिक्त मजदूरी ब्याज के रूप में दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना में 1/3 यानी 33% काम महिलाओं को देना अनिवार्य किया गया है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वो कटाई बुवाई के समय अधिकतम 60 दिन तक मजदूरों को कृषि कार्य में लगाने के लिए अधिसूचना जारी कर सकें। किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रशासनिक व्यय को 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है, जिससे रोजगार सहायकों के वेतन में देरी और भुगतान रोके जाने की समस्या न हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन अगले वर्ष 15 अगस्त से शुरू होने की संभावना है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि यह बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलेगी। सबसे पहले सूरत से बिलीमोरा तक का सेक्शन और उसके बाद वापसी से सूरत तक का सेक्शन खोला जाएगा।
बुलेट का पहला सेक्शन है सूरत से बिलीमोरा ओपन होगा, उसके बाद में वापसी से सूरत ओपन होगा, उसके बाद में वापसी से अहमदाबाद ओपन होगा और उसके बाद में ठाणे से अहमदाबाद ओपन होगा, फिर मुंबई से अहमदाबाद। 3 टेक्नोलॉजी जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, सस्पेंशन वाली बोगी की टेक्नोलॉजी, प्रोपल्शन की टेक्नोलॉजी और व्हीकल कंट्रोल की टेक्नोलॉजी, ये तीनों का डिजाइन पूरा बना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पावन पिपरवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में पहली बार पिपरवा से संबंधित अवशेष और पुरातात्विक सामग्री एक साथ प्रदर्शित की जाएगी। 1 सदी से भी अधिक समय बाद पिपरवा से लाए गए ये अवशेष नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में संरक्षित रखे गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार वर्ष 1898 में पिपरवा अवशेषों का पता लगा था। प्रारंभिक बौद्ध धर्म के पुरातात्विक अध्ययन में भगवान बुद्ध से सीधे संबंधित इन अवशेषों का महत्वपूर्ण स्थान है। पिपरवा स्थल से जुड़े पुरातात्विक प्रमाण इसे प्राचीन कपिल वस्तु से जोड़ते हैं, जहां भगवान बुद्ध ने अपना प्रारंभिक जीवन बिताया था। यह प्रदर्शनी बौद्ध धर्म से जुड़े सभ्यतागत संपर्कों तथा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आज पटना आ रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश कल पटना उच्च न्यायालय परिसर में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही न्यायिक अधिकारियों के लिए विकसित किए गए प्रौद्योगिकी सक्षम ईएसीआर न्याय का उद्घाटन करेंगे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंस से गयाजी स्थित न्यायाधीश अतिथि गृह का उद्घाटन भी करेंगे। इधर ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संगम कुमार साहू को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इस संबंध में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने राज्य के चिकित्सकों को दवा पर्ची पर साफ साफ और कैपिटल अक्षरों में दवा का नाम लिखने का निर्देश दिया है। NMC के अनुसार चिकित्सक केवल जेनरिक दवा का नाम ही पर्चे पर लिखेंगे। PMCH और IGIMS के प्राचार्यों ने संयुक्त रूप से बताया कि इस निर्देश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। अनियमितता पाए जाने पर चिकित्सकों पर कार्रवाई की जाएगी। विश्व के किसी भी जगह से राज्य में फिल्म शूटिंग का स्थान आसानी से खोजा जा सकेगा। कला और संस्कृति विभाग के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि इसके लिए बिहार स्टेट फिल्म विकास निगम ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट पर राज्य के कलाकारों की भी विस्तृत विवरण उपलब्ध है। राज्य में जीविका दीदियों के कार्यों पर 7 राज्यों के छात्र छात्राएं शोध कर रहे हैं। जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने बताया कि देश के 7 राज्यों के विश्वविद्यालयों और उनसे संबंधित कॉलेजों ने अपने परियोजना कार्य में जीविका दीदियों को शामिल किया है। श्री शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, असम, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। उन्होंने बताया कि राजधानी पटना के गांधी मैदान में चल रहे सरस मेले में भी छात्र छात्राओं की टीम जीविका दीदियों के कार्यों का निरीक्षण कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। वर्ष 2025 भारत के विकास पथ में एक निर्णायक कालखंड है। इस वर्ष नीतियों ने प्रगति को नई धार दी और इरादों ने दिए सार्थक परिणाम। आज विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में प्रस्तुत है 2025 के दौरान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की प्रगति।
2025 में भारत ने अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ हासिल किया। इस वर्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI में बड़ी प्रगति हुई। इंडिया AI मिशन के तहत सरकार ने नैतिक मानव केंद्रित AI प्रणाली बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। हाल ही में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की 2025 ग्लोबल AI वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया। 2025 में सेमीकंडक्टर और उन्नत विनिर्माण में भी नायक प्रगति हुई। पिछले वर्ष नोएडा और बेंगलुरु में 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन के लिए 2 केंद्र शुरू किए गए। इसी तरह पिछले साल सितंबर में देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित विक्रम 32-बिट चिप को सेमीकॉन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेश किया गया। इस साल अंतरिक्ष और रणनीतिक तकनीकों में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई। दुनिया के सबसे अग्रिम पृथ्वी अवलोकन रडार सैटेलाइट निसार का सफल लॉन्च भारत अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक सहयोग था। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के नए इन्फिनिटी परिसर का भी उद्घाटन किया और कंपनी के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का अनावरण किया।
स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और सबसे बड़ी बात यूथ पावर का प्रतिबिंब है। हमारी युवा शक्ति की इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप आज नई बुलंदी छू रही है।
2025 में परमाणु ऊर्जा विधेयक, जिसे शांति के नाम से जाना जाता है, इस कदम से पहली बार इस क्षेत्र में निजी भागीदारी के लिए रास्ते खुले। कुल मिलाकर इन विकास कार्यों ने 2025 को तकनीकी आत्मनिर्भरता के वर्ष के रूप में रेखांकित किया। आदर्श की रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज भी घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 5 दिनों तक मौसम के रुख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के गोपालगंज, दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया समेत 7 जिलों में शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है। वहीं राज्य के उत्तर और दक्षिण पूर्व हिस्सों में कल सुबह कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।
दिनांक 2 जनवरी 2026, राज्य के गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया जिलों के कुछ स्थानों में शीत दिवस जैसी स्थिति होने की संभावना है। राज्य के उत्तर भाग के जिलों के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान राज्य के शेष भाग के कुछ स्थानों में मध्यम से घना स्तर का कोहरा छाए होने की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सिवान का जिलादेई राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे उन दावों का खंडन किया है जिनमें 10 लाख रुपए से अधिक के बैंक लेनदेन पर 85% कर लगाने की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय PIB के तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि आयकर केवल आय पर लगाया जाता है, न कि लेनदेन पर। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि आयकर कानून में 10 लाख रुपए से अधिक के बैंक लेन देन पर किसी तरह का कर लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कहा है कि पहली फरवरी से सभी नए फास्टैग जारी करने के लिए कारों के नो योर व्हीकल KYV कार्ड बंद कर दिए जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार यह कदम राजमार्गों से आने जाने वाले लोगों की सुविधा और फास्टैग एक्टिवेशन के बाद होने वाली परेशानी को खत्म करने के लिए उठाया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि केवल शिकायत वाले विशेष मामलों में ही KYV कार्ड आवश्यक होगा। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने नवादा के एक कार्यक्रम में पटना से ककोलक जलप्रपात तक जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। परिवहन मंत्री ने कहा कि अभी एक बस का संचालन शुरू किया गया है, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। कोढ़ा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंजन कुमार सिंह ने बताया कि मृतक का आपराधिक इतिहास रहा है। अररिया जिले में साइबर थाना पुलिस ने फिंगरप्रिंट क्लोन कर रुपए की अवैध निकासी करने वाले एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। पटना जंक्शन से रेल पुलिस ने 10 लाख रुपए के साथ दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को लूटने का काम करते थे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, जी राम जी से स्कूलों के वर्ग कक्ष बनेंगे और सोलर लाइट भी लगाई जाएगी, मोबाइल से मजदूरों की लगेगी हाजिरी। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, 1 फरवरी से अतिरिक्त शुल्क, बढ़ जाएंगे गुटखा बीड़ी और सिगरेट के दाम। प्रभात खबर ने भवन निर्माण मंत्री विजय कुमार चौधरी के हवाले से लिखा है, योजनाओं को समय पर करें पूरा। दैनिक भास्कर की विशेष रिपोर्ट है, ईडीबी फंडिंग से बदलेगा 6 जिलों का सफर, सड़कें 2 लेन बनेंगी, बाढ़ के दौरान भी आवागमन होगा सुगम। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, 9 वर्ष पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। आज अखबार की सुर्खी है, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए पाठ टीका लिखना होगा अनिवार्य, शिक्षकों की फर्जी उपस्थिति दर्ज होने पर प्रधानाध्यापकों पर होगी कार्रवाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निगरानी ब्यूरो राज्य के 6 अधिकारियों और 2 पूर्व मुखिया की संपत्ति को करेगा जब्त। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत गांव का कोई भी काम कराने का निर्णय ग्राम सभा करेगी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आज पटना आ रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश कल पटना उच्च न्यायालय परिसर में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। और मौसम विभाग ने कहा, गोपालगंज, सहरसा और पूर्णिया समेत 7 जिलों में शीत दिवस बने रहने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।